आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और मेलबर्न में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। मेलबर्न को नार्न के नाम से भी जाना जाता है। इसका पारंपरिक आदिवासी नाम है, जिसे वुरुंग जेरी, वाय वुरुंग और बुन वुरुंग समुदाय के लोग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या रहे और किस प्रकार ये यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और सशक्त बनाएगी। श्रोताओं, यात्रा के आखिरी चरण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स रोडमैप की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश T20 लीग का एक मैच चेन्नई में आयोजित किए जाने की भी घोषणा की। खेल के क्षेत्र से जुड़ी इन महत्वपूर्ण घोषणाओं के अलावा तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए। आइए जानते हैं कि इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या रहे।
रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने नई संयुक्त रक्षा एवं सुरक्षा घोषणा जारी की। इसके तहत दोनों देश रक्षा सहयोग, सेनाओं के बीच तालमेल, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगे। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक नया प्रारूप भी शुरू किया गया, जिससे सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और समुद्री अभियानों में बेहतर समन्वय हो सकेगा। साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने पैक्ट्स साझेदारी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा, डिजिटल सहयोग, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में मिलकर काम करना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत और कैनेडा के बीच उभरती प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी के तहत भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। खनन क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इसके तहत भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में खनन उपकरण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र सौंपा गया, जबकि विक्टोरिया विश्वविद्यालय को गुरुग्राम में अपना परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। सांस्कृतिक सहयोग के तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारत की 3 प्राचीन कलाकृतियां लौटाई। इनमें 11वीं से 12वीं शताब्दी का ग्रेनाइट से बना नंदी, 11वीं शताब्दी की कांस्य से बनी भद्रकाली के साथ त्रिशूल और 12वीं शताब्दी का बेसाल्ट से बना 6 मुखों वाले स्कंद यानी कार्तिकी की प्रतिमा शामिल है। इसके अलावा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कोलकाता और ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ फिल्म स्कूल के बीच भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे फिल्म और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
श्रोताओं, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं वर्ष 2014 में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया नागरिक परमाणु समझौते को लागू करने की दिशा में प्रशासनिक व्यवस्था को भी अंतिम रूप दिया गया। आज के बदलते वैश्विक हालात और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि की साझा परिकल्पना आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख आधार बन चुके हैं। आइए सुनते हैं इस विषय पर ये विस्तृत रिपोर्ट।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा आपूर्ति पर उसके प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों ने ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया को तरल ईंधन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करता है। ऊर्जा परिवर्तन को गति देने, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और कम कार्बन वाले ईंधन पर सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों ने जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस पहल का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही दोनों देशों ने नागरिक परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाते हुए केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा मानकों के तहत ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है। दोनों देशों ने एक स्वतंत्र, खुले, नियम आधारित और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों ने क्वाड की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और मई 2026 में नई दिल्ली में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के परिणामों का स्वागत किया। इसके साथ ही भारत की अध्यक्षता में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के माध्यम से सहयोग बढ़ाने, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के तहत जारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और ऑस्ट्रेलिया भारत इंडोनेशिया त्रिपक्षीय तंत्र के जरिए समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और समुद्री क्षेत्र की बेहतर निगरानी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को भी नई गति देने पर सहमति बनी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आसियान की केंद्रीय भूमिका, प्रशांत द्वीप समूह फोरम और भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के महत्व को भी रेखांकित किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर भी दोनों देशों की सोच एक जैसी रही। ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन दोहराया, साथ ही वर्ष 2028-2029 के लिए भारत और वर्ष 2029-2030 के लिए ऑस्ट्रेलिया की गैर स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के समर्थन की भी पुष्टि की। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
श्रोताओं, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सहयोग के विषय पर पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार से हमने विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
अभी हमने 2022 में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की थी, फुल फ्लेज्ड ट्रेड एग्रीमेंट नहीं थी, परंतु एक पहला कदम था एक्टा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, और उसका फायदा भी बहुत हुआ है। पिछले चार साल में अगर मैं कहूं जो करीब ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो निर्यात है वो 200% बढ़ा है। अब पहली जनवरी 2026 से 100% जो भारत की पदार्थ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो सारे ड्यूटी फ्री हो गए हैं। अब एक्टा को रिप्लेस करके सीका की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसमें कि केवल ट्रेड इन गुड्स नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, ट्रेड इन सर्विसेज रहेगा, और ये सब क्षेत्र जब मिलेंगे तो हमारे दोनों देशों के बीच का सहयोग है वो बहुत बढ़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सहयोग है वो केवल द्विपक्षीय मामलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूरे क्षेत्रीय, इस पूरे इंडो पैसिफिक में जिसे हम कहते हैं, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की जो डेमोक्रेसीज को मिलके ये निश्चित करना होगा क्षेत्र जो है ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी यहाँ पर बनी रहे, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यहाँ पर जो काम होता है वो सब होता रहे।
श्रोताओं, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की गवर्नर जनरल सैम मोस्टन से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं। मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के बाद ये दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी के साथ आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अरुणदीप सिंह।